نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين وأتم الحج والعمرة لله اور حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ ہی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے موقع پر کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو, کیونکہ حج کے ارکان حج کے مناسک ایسے ہیں جو واقعی اگر آپ نے سیکھے نہ ہوں تو حج کے موقع پر صحیح سے تمام ارکان کو ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تمام مناسک ہمیں سکھائے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج آخری حج ہی تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی, تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکن لوگوں کو تاکید کی کہ مجھ سے سیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو. تو یہ وقت ہمارے لیے اب قریب ہے حج کا. الحمدللہ فضا میں لبیک کی صدائیں گونجنے والی ہیں اور دنیا جہان سے خوش نصیب لوگ حج کے لیے جمع ہونے والے ہیں. یہ میں اس لیے خوش نصیب کہہ رہی ہوں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے, ایک انویٹیشن ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے مہمان بنتے ہیں, اس کے گھر کا حج کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو سعادت نصیب فرماتا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری عباداتی جمع ہو جاتی ہیں. انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے, انسان نمازیں پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جاتا ہے, قربانی کرتا ہے, ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے, ثوابتیں اٹھاتا ہے. لیکن اگر انسان کا دل اور دلی جذبات ساتھ نہ ہو تو اس حج کے موقع کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو اس لیے حج کی جسمانی تیاری بھی کرنی ہے, ذہنی تیاری بھی کرنی ہے. اور یہ کیسے کریں گے انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور میں آپ کو حج کی فضیلت بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ آپ کے لیے یہ سفر بھی آسان ہو جائے. یہ یاد رکھیے ایک مشقت کا سفر ہے. ظاہر ہے محنت میں صبر بہت ضروری ہے. تو جہاں آپ دوسرا سامان آج کل باندھ رہے ہوں گے اپنے ساتھ تو سفر کا صبر کا سامان بھی ساتھ باندھ لیجئے. یہ بھی زیادہ راہ ہے. جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک یاد رکھیے گا کہ صبر صبر اور صبر یہ ضروری ہے. اسی لیے میں انشاءاللہ آج آپ کو حج کے فضائل بتاؤں گی تاکہ آپ کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جائے. اور ضرور دوسری تیاری ایک یہ ہوگی آپ کی کہ ضرور اپنے حج کے تمام ارکان اور جو طریقہ ہے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ پورا آپ کو پڑھنا چاہیے. پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ ان کی قربانیاں کیسی تھی, کیونکہ اس میں بہت سارے مناسک ابراہیم علیہ السلام اور بی بی حاجرہ ان کی یاد پہ ہیں مبنی, ان کے فٹ سٹیپس پہ آپ نے چلنا ہے. وہاں پہنچنے پہ آپ کو جسمانی تھکاوٹ تو ہوگی ساتھ ذہنی بھی ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں مجھے راستے میں اور ان میں مجھے کیا کرنا ہے. उसके लिए मैं आपको चंद एक पहले टिप्स देती हूँ इंशाल्लाह ताला। पहली टिप तो ये है कि आप घर से ये नियत कर लें कि जो भी थकन मुझे इस रास्ते में होगी, जो इंतजार करना पड़ेगा, सख्ती होगी, भूख होगी, प्यास होगी, मैंने इसमें घबराना नहीं है। जरा भी घबराहट हो तो सोचें कि अभी तो आरामदेह जहाज है, इसका सफर है और यहां मैं 24-25 घंटों में पहुंच गई हूं, मगर हमसे पहले लोग जो थे वो महीनों ये सफर बहरी जहाज में किया करते थे, ऊंटों पे किया करते थे, दूर दराज के इलाकों का सफर तय करके आया करते थे। कितनी उनको मुश्किलात होती थी, तो मुझे तो सिर्फ चंद घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। उनका इंतजार सोचे कितना तवील होता था। फिर मुझे तो हर कदम पे सहूलतें हैं, उनका तो किधर किधर से गुजर के आना होता था, अक्सर लोग रास्ते में ही वफात पा जाते थे। इतनी सफर की मुश्किलात होती थी, ना कोई दवाई थी, ना कोई हस्पताल होता था, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कुछ, के किस किस तरह वो पहुंचते थे। तो जब से मैं घर से निकली हूं, मैं फी सबीलिल्लाह हूं, यानी अल्लाह के रास्ते में हूं। तो जो भी अल्लाह के रास्ते में मुझे मुश्किल होगी, तो मेरा तो अजर का काउंटर शुरू हो चुका है ना, वो मीटर ऑन कर लेते हैं ना टैक्सी वाले, तो ये मीटर ऑन हो गया आपका अजर का। हर हर कदम पे अब अजर मिल रहा है, हर हर कदम आपका इबादत है। अभी पहुंचे नहीं है घर से, सिर्फ कदम ही बाहर निकाला। तो जहां बहुत इंतजार करना पड़ेगा, जहां बहुत देर खड़े रहना पड़ेगा या बहुत देर बैठे रहना पड़ेगा, तो नंबर 2 टिप ये है कि उस वक्त का आपने फायदा उठाना है। लेकिन जब आप घर में होते हैं ना, तो बहुत सारी और मसरूफियात होती हैं, घर हैं, बच्चे हैं, सफाइयां हैं, खाना पकाना है, लॉन्ड्री है, पिक एंड ड्रॉप बच्चों का, कोई बर्तन धो रहे हैं कभी। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं इस सफर के लिए, तो तमाम कामों से आप फारिग हो गए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बच्चे भी पास नहीं होते कि उनका कोई काम हो, घर की सफाई सुथराई और खाने पकाने से भी आप फारिग हैं। तो इसमें आप सोच लें कि आप कितनी दफा इस्तगफार कर सकती हैं, कितनी ज्यादा आप तस्बीह कर सकती हैं, कितने अजकार कर सकती हैं। इवन रमजान वगैरह में भी हमारे ऊपर इतनी सारी और जिम्मेदारी होती है, हम मुकम्मल फारिग तब भी नहीं होते। लेकिन सुभान अल्लाह, इस सफर में आप मुकम्मल फारिग हैं। इससे ज्यादा शायद आपको फरागत ना कहीं पे भी नहीं मिली होगी, जितनी आप देखेंगे कि हज के दिनों में, खास तौर पे मीना में या सफर में बहुत फरागत होती है। तो अब इस फरागत में क्या करना है? अभी तो घर से चलते वक्त लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी नहीं पढ़ना, ओके, अभी तो मीकात नहीं आई, मीकात से आप शुरू करेंगे ना ये, तो अभी तो आप फारिग ही फारिग हैं। तो अपना वक्त बजाए इसके कि वो उसमें कुछ लगी होती हैं, टीवी लगे होते हैं जहाजों में, उनके ऊपर और चीजें देखने के, या कुछ है कोई तिलावत सुने या तस्बीह करती रहें। और इसके लिए एक और आपको टिप दूंगी, तस्बीह हाथ में जरूर रखिएगा। उससे क्या फायदा होता है कि चूंकि हमें तो जिक्र की आदत ही नहीं होती, तो अब बार बार भूल जाता है कि हमने जिक्र करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, अपने रब का जिक्र करो जब भी भूल जाओ। तो जब आपको भूल जाए तो याद दहानी कैसे होगी? जब तस्बीह हाथ में होगी तो अच्छा वो मुझे तस्बीह करनी थी, फिर याद आ जाएगा। तो तस्बीह साथ पकड़े रखे। फिर एक और चीज, अपने साथ पॉकेट साइज कुरान पाक जरूर रखिए। अगर तर्जुमे वाला रख सकते हैं छोटा सा, तो वो रख लें। उससे ये फायदा होगा कि एक ही चीज कर करके इंसान उकता जाता है। तो कुछ देर के लिए आपने कुरान की तिलावत कर ली, कुछ देर के लिए कुछ आयात को हिफ्ज कर लिया, कुछ देर के लिए आपने कुछ अपनी रिवीजन कर ली, ठीक है। और चीजें जो साथ रखने की मैं अभी आपको बताती हूँ, फिर बताऊंगी क्यों आपको ये रखवा रही हूँ। एक छोटा रेडियो कोशिश करें साथ रख लें, और छोटा सा CD प्लेयर या MP3 प्लेयर ये साथ ले लें। इनको तो आप बैग में ही रखेंगी, रेडियो वगैरह को बिल्कुल पर्स में रखने की जरूरत नहीं। तफसीर की एक किताब ये साथ रख लीजिए सामान में। आपने कोशिश करनी है, नियत भी कर लें कि आप इंशाअल्लाह ताला इस सफर में जब से आप घर से निकली हैं, तो एक दफा कुरान पाक पूरा आप तिलावत कर लेंगी। तो आप जब टारगेट रखेंगी ना, तो आसानी होगी कि मुझे ये मुकम्मल करना है, क्योंकि काफी आपके पास टाइम होगा। अच्छा, अगली टिप ये, जब से आप ये सोच लेंगी ना कि मैं अल्लाह के रास्ते हूँ। तो अब ये जो आपका इंतज़ार है, ये जो आपका तंग सीट में बैठना है, ये जो आपका छोटे टॉयलेट्स में गुजारा करना है, आपको तंगी महसूस नहीं होगी इसमें। फौरन जब तंगी महसूस हो कहीं पे भी, तो दुआ करें। एक तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसको ऊपर अजर मिलेगा, अजर तो मिल रहा है। दुआ करें, जहां जहां आपको तंगी महसूस होना, जहां भी मुश्किल आए, तो दिल ही दिल में कहें, या अल्लाह ये आपके लिए मैं मुश्किल उठा रही हूं, मुझे इसका अजर, इस मुश्किल के बदले में मुझे अजर मेरी आखरत में अता फरमाना, कि मेरी आखरत की कोई मुश्किल आसान कर देना या अल्लाह, इस मुश्किल के बदले में जो मैं यहां उठा रही हूं, ये अल्लाह तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। वरना देखिए ना, आप घर में आराम कर सकती थी, घर में आप बैठ सकती थी, घर में आपके साफ सुथरे बाथरूम्स हैं वो यूज कर सकती थी, आरामदेह बिस्तर पे लेट सकती हैं, अपनी पसंद का खाना खा सकती हैं, वहां पे खाने को जो मिलेगा वो आपको खाना है, जैसा बिस्तर होगा वैसा गुजारा करना, रश में धक्के भी खाने, तो ये धक्के अल्लाह तेरे लिए हैं। या अल्लाह ताला इनकी वजह से ये जो मुश्किल है अल्लाह आखरत की मुश्किल आसान कर देना। तो फिर देखिए आपके दिल को सुकून आ जाएगा कि ये ऐसे ही मैं मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर रही। कितनी अच्छी बात है कि अगर एक यहां की मुश्किल के बदले में मेरी आखरत की कोई मुश्किल आसान हो जाए, तो ये नफे का सौदा है ना। और एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, जो बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। हम सारा वक्त ये शिकायत करते रहते हैं कि मर्द बाजमात नमाज पढ़ते हैं, उनको अजर मिल जाता है, मर्द जुमे के लिए जाते हैं वो कितना अजर पा लेते हैं, मर्द अजान देते हैं उनको अजर मिल जाता है, मर्द जिहाद करते हैं उनको अजर मिल जाता है। तो हमारे लिए क्या है ना, औरतें जुमा पढ़ने के लिए भागती जाती हैं, हालांकि उनके ऊपर जरूरी नहीं है, बा जमात नमाज के लिए भागती है, उनके लिए जरूरी नहीं, ये सब मर्दों के लिए ना, अजान दे सकते हैं आप, नहीं दे सकती। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हज को औरत का जिहाद करार दिया कि वो हज करती है तो उसके लिए ऐसे ही अजर है जैसे वो जिहाद कर रही है। तो आपके लिए तो बहुत आसानी हो गई। तो ये सोच के इस सफर पे जाइए कि ये जो आज तक मेरी कंप्लेंट्स थी, सुभान अल्लाह, अब अल्लाह ताला मुझे इतने आसानी में ही अल्लाह ताला वो अजर अता फरमा रहे हैं कि जो मर्दों को बहुत मुश्किलात उठा के उनको मिलता है। फिर देखें कि सफरे हज का आगाज होता है जब खासतौर पे आप मीकात से गुजरते हैं, तो आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं। तो अल्लाह के लिए सिर्फ ये जुबान से हाजिरी का इकरार करना ये काफी नहीं है, दिल, आपकी रूह, आपका जिस्म, सब चीजों की हाजिरी जरूरी है, शऊर की हाजिरी जरूरी है। तो इसके लिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करेंगे हर हर जगह पे, थ्रू आउट आपकी यही होनी चाहिए कोशिश कि इस बारे में सुन्नत क्या है, ताकि सुन्नत का भी अजर मिले। और यही आप नियत कर लें कि मैंने सुन्नत के मुताबिक सारे काम करने हैं। तो ये आपने अभी से प्लान कर लेना, प्लान करें मैंने सफर के दौरान क्या क्या करना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये चीज करनी है, इसके लिए मैं ये चीजें अपने पर्स में रखूंगी, एयरपोर्ट पे उतर के क्या करना है, वो जितनी देर वहां पे मुझे इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं ये करूंगी, फिर वो बस में जा रहे होंगे तो तब मैंने क्या करना है उसके लिए। अब देखें जब आप मीकात गुजर जाएंगे फिर तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन और चीजों का आप जाहिर है वहां पे भी सफर करते हैं, कभी मदीना जाएंगे, कभी और जगहों पे आप ज़ियारात करने के लिए जाते हैं, तो आपके पास फारिग टाइम होता है। तो आपने अपने बस के सफर के लिए कुछ प्लानिंग की होनी चाहिए पहले से, सब चीजें प्लान करेंगी ना तो उस तरह से आपके पास सामान होगा, वरना ढूंढती रहेंगी अच्छा ये चीज कहाँ है और वो कहाँ है। फिर आप देखें एयरपोर्ट पे आप उतरेंगी, वहां पे तो एक हंगामा सा होता है एयरपोर्ट में, सबको आगे पहुंचने की जल्दी होती है और जल्दी का काम शैतान का काम होता है, और यही आपको हज के मकसद से दूर कर देता है। तो इस मौके पे अगर कोई हमसे आगे बढ़ गया तो ईसार करने का बेहतरीन मौका है, ईसार अपने ऊपर किसी को तरजीह दे देना कि कोई बात नहीं, हम ईसार की बहुत बातें करते हैं, ईसार का मौका ही है, आपको चांस मिल रहा है, आप इशार करके इस वक्त अजर कमा सकती हैं। मगर हज के मौके पर अक्सर ये देखा गया, हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि अफरा तफरी है और एक बेसब्री है और आवाजें ऊंची हो रही हैं। अपनी जात के सिवा किसी की परवाह नहीं होती। दूसरे के लिए अपनी बारी को छोड़ देना, ये तो हम कहते हैं हम पहले चले जाएं। अगर ये हमने हज के दौरान भी नहीं सीखा तो बताएं कौन सा मौका आएगा जब हम सीखेंगे। हालांकि सबने ही पहुंच जाना है, किसी ने भी नहीं पीछे रहना, मगर हर एक को जल्दी है, तभी पता चलेगा कि कौन है जो ईसार कर सकता है। अंसारे मक्का ने, मदीना ने तो उस वक्त ईसार करके दिखाया था, अपने घर बार, अपने काम, अपने तिजारतें, अपनी बागात, अपनी हर चीज के अंदर इशार किया था। तो हम इतने बड़े मौके तो नहीं पाते, उसमें हम क्या इशार करेंगे अगर हम ये छोटी छोटी चीजें भी गिव अप ना कर सके, कि हम कह के आए हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में हैं, और फिर भी हमसे इतना ना हो सके कि हम अपनी बारी किसी और को देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं आप आगे चले जाएं। फिर आप देखें होटल पहुंचने पर भी बहुत भीड़ लगी होती है, इस मौके पर भी जल्दबाजी से बचे। जल्दबाजी जो होती है वो इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देती है, इंसान उलझने लगता है। वो रूहानी खुशी जो होती है ना जिससे आप घर से निकले थे, वो सारी आपकी उड़ जाती है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि इतना रश और धक्कम पेल और इंतजार है, तो इंतजार की हमें कहाँ आदत होती है। तो उस वक्त अगर आप सब्र का मुजाहरा करेंगे और अल्लाह की खातिर सब्र करेंगे और ईसार करेंगे, देखें इसमें आपको बहुत बड़ा अजर भी मिलेगा, आप पुरसकून भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि कितना बड़ा आपको इसके ऊपर अजर मिल रहा है। एक एक लम्हे के ऊपर आप तो अजर पा रहे हैं, आपको तो बैठना भी बायस अजर है, इंतजार भी बायस अजर है, तो कोई चीज भी आप मिस नहीं कर रहे कि आपने होटल पहुंच के जल्दी कोई क्या ऐसा करना है। तो कुछ भी, आपकी इबादत शुरू हो चुकी है, आपका सफर शुरू हो गया, आप अल्लाह के मेहमान बन चुके हैं। फिर आप जब अगर पहले मक्का जा रहे हैं तो अगर आप पहले रेस्ट कर लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद उमरा करने के लिए निकले ताजा दम होके, तो वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा आप उम्रे में दुआएं खुशू से कर सकते हैं, जिक्र शौक से कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं, वरना जाहिर है इतना लंबा सफर करके जब आप पहुंचते हैं जिस्मानी थकावट भी होती है, तो सर से उतारने वाले काम नहीं करने। ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा सफर है हज का, इट माइट बी योर वंस इन अ लाइफ टाइम चांस। अल्लाह करे आपको बार बार नसीब हो, हम सबको बार बार नसीब हो, लेकिन हर एक को नहीं हो पाता, और कोई पता नहीं है कि दोबारा कभी हमें यह मौका मिल सके कि नहीं। तो अपनी तरफ से बेस्ट करना है, बेस्ट। अब देखें उम्रे पे लोग फिर भी दोबारा चले जाते हैं, मगर हज बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी को दोबारा चांस मिले। तो ये सोच के करिएगा कि मुझे बस ये एक ही चांस मिला, शायद दोबारा कभी ना मिले, तो मैंने बेहतरीन करके दिखाना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग हज से आके फिर बाद में बहुत पछताते हैं कि एक दफा मुझे और चांस मिल जाए ना तो मैं बहुत अच्छा सा करूंगी, बहुत अच्छा करूंगी, लेकिन दोबारा चांस नहीं मिल पाता। तो आपको मैं इसलिए पहले ही कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जा रहे हैं ना, आप तो यही समझिएगा कि बस एक ही चांस मिला, हो सकता है इसके बाद कभी ना मिले। तो इसलिए मुझे अच्छे तरीके से करना है हर चीज को, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। तो सब्र आपने डाला हुआ ना पर्स में, इसको साथ ही रखिएगा, कहीं पे भी रह ना जाए, ठीक है। मैं आपको पहले फजीलत बता देती हूँ इन सब चीजों की, ताकि फिर इंशाल्लाह जैसे आपका शौक और बढ़ेगा तो फिर आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे इंशाल्लाह ताला आप तमाम अरकान अदा करेंगे, क्या इसके स्टेप्स हैं उम्रे के भी और हज के भी। एक बात अच्छा पहले थोड़ा सा समझ लें, एहराम को लोग समझते हैं कि एहराम वो कपड़े हैं, वो पहन लेने हैं, उसके बाद उनसे निकल नहीं सकते, ना उनको चेंज कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, बस वो पहने ही रखने हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मर्द के एहराम वो दो चादरें तो हैं बेशक, लेकिन उनको चेंज भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही यानी अब वो उन चादरों के साथ ही हैं, अब उसके बाद कभी उतार ही नहीं सकते जब तक हज ना खत्म हो, नहीं चेंज कर सकते। इसी तरह औरत का एहराम जो है वो उसके जो मामूल के कपड़े हैं वही उसका एहराम है, वो अपने यानी जो भी आपने अबाया पहना है, स्काफ पहना है, वही आपका एहराम है। वो एक स्टेट ऑफ एहराम इसको कह सकते हैं कि आप एक मेंटल मेंटली आप जहनी तौर पे आप अपने आप को ये यानी बावर कराते हैं, नियत करते हैं कि अब मैं एहराम की हालत में आ गई हूँ। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आप भी कोई सफेद कपड़ों को ही पहन के आएंगे, बल्कि बेहतर है कि वाइट आप ना पहने तो अच्छा है। कभी कोई ऐसे चीज ऊपर लग वग जाए या लाना करे कि कोई औरतों के साथ और कितनी तरह की मुश्किलात होती है ना, तो कोई ऐसा दाग लग गया तो फिर वो बहुत नुमाया हो जाता है। अच्छा जी, आपको फजीलत हज पहले मैं बताती हूँ। एक तो ये है कि अल्लाह ताला का ये हक है कि जो कोई इसके घर पहुंचने की इस्तेआत रखता हो तो इसके घर का हज करे, ये अल्लाह ताला का हक है। और जो कोई इसका इनकार करे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को फिर परवाह नहीं है, वो बेनियाज है जहान वालों से। फिर वो यहूदी होके मरे, नसरानी होके मरे, अल्लाह ताला को परवाह नहीं है उसकी। यानी कि जिसके पास इतनी इस्तेआत हो, इतनी कैपेसिटी हो, यानी ज्यादा राह हो मौजूद, मर्द है तो ज्यादा राह मौजूद है, औरत है तो उसके पास सफर का खर्च भी है, उसके पास महरम की सहूलत भी है, फिर भी बेपरवाह है, नहीं करते हज, तो अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की परवाह नहीं है। आप देखें, आप ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहां पे सुभान अल्लाह ख्वाह जानी दुश्मन होना, फिर भी वहां पे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दुनिया में एक वाहिद टेंशन फ्री जोन है, जन्नत का समझ लें टुकड़ा है, जहां पे अमन ही अमन है। आप एक अमन की जगह पे दाखिल होने वाले हैं, और ये एक वाहिद जगह ऐसी है जहां पे कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता हरम की हदूद के अंदर। आप बाहर बोर्ड ही देखेंगे तो बहुत ही खुशी होती देख के कि इससे आगे सिर्फ मुसलमान ही स्टेप इन कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपको हदीस पहले सुनाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करता है वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे पैदाइश के दिन था। सुभान अल्लाह। तीन अमल ऐसे हैं कि जो इंसान को प्योर कर देते हैं, गुनाहों से पाक साफ कर देते हैं। एक जो इस्लाम लाता है, तो वो इस्लाम जिस दिन लाया तो उसकी पिछली जिंदगी के सारे गुनाह धुल गए। दूसरा, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना। जो इंसान हिजरत करता है तो जिस दिन उसने हिजरत की उसकी जिंदगी के पिछले तमाम गुनाह माफ हो गए। ये दोनों काम हम नहीं कर पाते, कर सकते नहीं है, हम पैदाइशी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिजरत वो भी नहीं हम कर पाते। तो तीसरा जो काम है ना वो है हज मबरूर। हज जो है इसकी वजह से इंसान ऐसे हो सकता है कि जैसे गुनाहों से ऐसे पाक के, देखें न्यू बॉर्न बेबी कैसे होता है, ऐसे इंसान पाक हो जाता है कि एक गुनाह भी उसके ऊपर नहीं रहता। सुभान अल्लाह, कितना पाक साफ होता है, कितना प्योर होता है। तो ऐसे इंसान तभी होगा लेकिन कि जब वो हज ऐसा करे कि हज में, जैसे हदीस में है कि जिसने हज किया उसमें ना कोई शहवानी काम किया और ना कोई गुनाह का काम किया, तो तब वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे पैदाइश के दिन। तो ये ना हो कि हज पे भी जाके गुनाह को काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाके, जब मैं हज पे गई थी ना सुभान अल्लाह, मैं सोचती थी शायद वहां जाके, मेरा ये ख्याल था कि वहां जाके हमने कोई और ही नए इंसान ही बन जाना है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी है। जाहिर है रहते तो हम वही हैं जैसे यहां से गए हैं, तो कोई नए तो नहीं बन जाते। वो अगर कोई आदत आपको है तो वो आदत भी नहीं छूटती। तो वहां पे जाके भी गुनाह से बचना है, लड़ाई झगड़े फसाद एक दूसरे के साथ धक्कम पेल, खास तौर पे जाहिर है आप हस्बैंड के साथ जा रही हैं तो तब मैं जरूर कहूंगी आप लोगों को, सबको हिदायत करूंगी। तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मियां बीवी में वहां पे बड़ी लड़ाई हो जाती है, एक कुछ कह रहा होता है एक कुछ कह रहा होता है, तो फिर जाहिर है तू तू मैं हो जाएगी। कुछ एक वैसे ही इंसान को ये जाहिर है एक सफर में है तो सफर की जो मुश्किलात है उसकी वजह से थकावट है या इसकी वजह से इंसान और चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर अक्सर जो खवातीन ये अपनी ये पिल्स ले लेती हैं, उसकी वजह से भी कोई हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से भी ये लड़ाई झगड़े आम होते हैं। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहस तकरार नहीं करनी, क्योंकि देखिए इस हदीस में ये शरायत है कि शहवानी काम नहीं करना, कोई लस्टफुल काम नहीं, नजरें ऐसी जगह ना उठें, ना मर्दों की ना औरतों की, कि जहां पे देखना उनका जायज नहीं है। इसी तरह कोई गुनाह का काम नहीं करना, और गुनाह में ये सारी आ जाती हैं, गिबतें, झूठ, चुगलियां, फजूल बहसें, झगड़े, ये सब चीजें, तो ऐसा कोई काम ना करे। वला रफा वला फसूक वला जिदाल, तीनों ही बातें आ जाती हैं ना, जंगो जदल से प्लीज बचे। अब देखिए ना, कोई इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो कितना ही नेक हो, कोई भी ऐसा नहीं जो गलती से पाक हो, हर इंसान गुनाहगार है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने गिल्ट से निकलने का कितना ये प्यारा रास्ता हमें बता दिया, वरना गुनाहों का बोझ इतना होता है, इंसान ये बोझ लेके सारी जिंदगी घूमता रहता कि मेरे ऊपर इतना बोझ है, पता नहीं मैं पाक हुई कि नहीं, पता नहीं मेरी तौबा कबूल हुई कि नहीं, पता नहीं मैं इस वक्त किस स्टेट में हूं। इंसान के ऊपर कितनी गिल्ट रहती है ना, पिछली जिंदगी की गिल्ट रहती है कि अल्लाह क्या क्या कर दिया। आप जब कुरान पढ़ने लगे तो आप पता चला कि कितने गुनाह हमसे हुए, कोई गुनाह नहीं हमने छोड़ा, कुकुला कुकुल इबाद, नमाजों में कमियां, रोजों में कमियां, कितनी कितनी हमारे से कमियां रह गई हैं, इंसानों के हकूक कितने ज्यादा हमसे पामाल हुए। तो हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन ये हज एक ऐसा फरीजा है जो इंसान को पाक कर देता है। तो ये पाक होने का सफर है, सोचिए आप अपने आप को पाक करने जा रहे हैं, अपने आप को साफ करने जा रहे हैं, अपना बोझ उतारने जा रहे हैं। तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि कौन सा अमल सबसे अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछने वाले ने पूछा इसके बाद कौन सा अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर। बहुत से लोग आपको कहेंगे अल्लाह ताला आपको हज मबरूर नसीब फरमाए। क्या होता है हज मबरूर? मबरूर किससे निकला है? बिर से। बिर किसको कहते हैं? नेकी। तो वतआवनु अलल बिर व तक्वा है ना, पढ़ी भी ना, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर है ना। तो मारूफ, बिर, ये सब नेकी है। तो नेकी वाला हज कौन सा है? जो नेकियों से भरपूर हज हो, जिसमें कोई गुनाह का काम ना हो, ऐसा हज। तो हज मबरूर का अजर कितना है? एक तो गुनाहों से पाक हो जाता है इंसान, दूसरे हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक उमरा दूसरे उमरे के दरमियान के गुनाहों का कफारा हो जाता है। अगर आप पहले उमरा कर चुके हैं, अब भी जाके उमरा करेंगे, गुनाहों का कफारा बन गया। और हज मबरूर का अजर जन्नत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह। यानी हज इतना बड़ा नेकी का काम है जिसके लिए जन्नत जाने की उम्मीद बन जाती है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा देखें इसकी फजीलत, हज और उमरा लगातार करो। अब जैसे कई लोग कहते हैं ना, देखो पहले हज किया है फिर चल पड़ी है, उमरे इतने किए हैं बस इन्होंने तो काम ही पकड़ लिया उमरे पे उमरा करना। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज और उमरा लगातार करो, ये दोनों फक्र फाका और गुनाहों को ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल को खत्म कर देती है। ऐसे खत्म, भट्टी में डाले ना लोहा और सोना, तो देखिए ना उसका जो मैल होता है वो निकल जाता है, प्योर हो जाता है, सोना कुंदन बन जाता है। तो मबरूर हज का सिला भी ऐसे ही है कि फकरो फाका और गुना ऐसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे धुल जाते हैं। और हज मबरूर का सिला जन्नत के सिवा और नहीं हो सकता, इब्ने हब्बान में और तिर्मिजी की हदीस है। तो इसी तरह एक और हदीस। अच्छा, अब जहन में एक ये बात आती है ना कि देखें मैं निकली हूं घर से, अब घर से निकल चलने पे मुझे कितना सवाब मिलेगा, फिर यानी सफर की जो सहूबतें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ उसका कितना सवाब है, फिर इसी तरह वकूफ़े अरफा का कितना सवाब है, फिर आप तो सर नहीं मुंडवाएंगी, मर्द सर मुंडवाते हैं, आप ज़ाहिर बाल काटेंगी उसका कितना सवाब है, ये सब चीजों का कितना मुझे सवाब मिल रहा है, कुर्बानी का कितना सवाब है। तो देखें अब ये हदीस से आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाजी घर से निकलता है अपने घर से, तो उसकी सवारी के हर उठते हुए कदम और नीचे लगने वाले कदम पर उसको एक नेकी मिलती है। अब वो तो ऊंट पे जाया करते थे उस जमाने के लोग, आप सोच लें कि मसलन आप जहाज पे हैं, तो जहाज जब उड़ता है और वहां से जमीन पे पहुंचता है और कितना उसने मील तय किए, तो हर उठने वाले कदम, इसी तरह आप बस पे हैं या उस पे, तो हर टायर की रोटेशन जो है, फिर आप नीचे उतरते हैं तो हर जो आपका कदम है उस पे एक नेकी मिलती है, एक गुनाह मिटता है और एक दर्जा बुलंद होता है। सुभान अल्लाह, क्या क्या मिला आपको? एक नेकी मिली, एक गुनाह मिटा और एक दर्जा बुलंद हो गया। तो आपका तो एक एक कदम भी भाई से अजर है ना आपके लिए। फिर आपने तवाफ किया, तवाफ के बाद आप 2 रकत पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवाफ के बाद 2 रकत पढ़ना ऐसी है जैसे औलादे इस्माइल में से एक गुलाम आजाद करना, तो आपको एक गुलाम आजाद करने का अजर मिल गया। फिर सफा और मरवा की सही ऐसी है कि 70 गुलाम आजाद करने के बराबर है। सुभान अल्लाह, 70 गुलाम आजाद हो गए। फिर वकूफ अरफा में आपको कितना अजर मिलता है? अरफा के दिन जब आप खड़े होते हैं और दुआएं करते हैं तो कितना अजर मिलेगा? जब हदीस में है कि वकूफ अरफा के पिछले पहर अल्लाह ताला पहले आसमान पे उतर आते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फखर करते हैं, जिक्र करते हैं, फरमाते हैं मेरे बंदे मेरे सामने जन्नत की उम्मीद लेके परागंदा हालत में दूर दराज के मकामात से मेरे पास आए हैं। अगर इनके गुनाह रेत के जर्रों के बराबर या बारिश के कतरों के बराबर या समंदर की झाग के बराबर भी हैं तो मैंने इनको बख्श दिया, और इनको भी बख्श दिया और जिनकी ये सिफारिश कर रहे हैं उनको भी बख्श दिया क्या? सुभान अल्लाह, यानी ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर इंसान जमरात पे कंकरियां फेंकता है ना जब, तो हर कंकरी के बदले इंसान हलाक कर देने वाले गुनाहे कबीरा से फारिग हो जाता है, उसका कफारा बन जाता है, उसका ये गुनाहे कबीरा माफ हो जाता है जो हलाक करने देने वाला गुनाहे कबीरा है। फिर कुर्बानी करता है इंसान तो कुर्बानी अल्लाह के यहां महफूज हो जाती है, और ये कुर्बानी यानी उसका खून जो कुर्बानी किया उसका खून जमीन पर गिरता है तो पहले कतरे के जरिए हर गुनाह की बख्शिश मिल जाती है, पहले कतरे के जरिए गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। कुर्बानी के अलावा कोई अमल ऐसा नहीं जो उस दिन अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज्यादा अजीज हो। कुर्बानी के जो सींग हैं, जो बाल हैं, जो खुर हैं, ये सब मीजान में तुलेंगे और ये इनके समेत वहां पे आएगी। तो सोचिए जरा कुर्बानी करने के ऊपर कितना बड़ा अजर इसको मिल गया। फिर उसके बाद सर मुंडवाता है तो सर मुंडवाने पर हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी और एक गुनाह माफ हो जाएगा। देखिए कंकरी मारने से हर कंकरी पर एक कबीरा गुनाह मिट रहा है और यहां पे हर बाल के बदले में एक नेकी मिल रही है और एक गुनाह माफ हो रहा है। फिर बैतुल्लाह का तवाफ इंसान इस हालत में करता है कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं रह जाता। तो इस हदीस में बहुत सारी खुशखबरियां हैं, एक एक अमल पे इंसान को तैयार किया गया कि हर अमल पे आपको अजर मिल रहा है। ठीक है, जब आप अरफा में हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों में फख्र कर रहे हैं आपके ऊपर। और अरफा के दिन तो उस दिन से बढ़ के और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अल्लाह ताला बंदों को दोजख से इससे बढ़ के किसी और दिन आजाद करता हो, कोई दिन ऐसा नहीं है। यानी उस दिन सबसे ज्यादा अल्लाह ताला बंदों को दोजख से आजाद करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम में दुआएं मांगी थी और अल्लाह ताला ने उन दुआओं के नतीजे में फरमाया था कि मैंने इनको माफ कर दिया आपकी उम्मत को, अलबत्ता जालिम से मजलूम को मैं बदला जरूर दिलवाऊंगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरी परवरदिगार, अगर तू चाहे तो मजलूम को अजर दे दे और जालिम को माफ कर दे, यानी जालिम को भी माफ कर दे मेरे रब, मेरी उम्मत के जालिम को भी माफ कर दे। तो अराफा की शाम तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। जब मुजदलिफा में सुबह का वक्त आया तो उस वक्त ये भी दुआ कबूल कर ली गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, इस वक्त आप हंसा नहीं करते, तो आपको किस चीज ने हंसाया? अल्लाह आपको इस तरह हंसता मुस्कुराता ही रखे, मगर क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन जो इबलीस है, उसको जब पता चला कि मेरी दुआ कबूल हो गई और मेरी उम्मत को बख्श दिया गया, तो उसने मट्टी उठा के अपने सर पे डालना शुरू कर दी और हलाकत और बर्बादी की दुआएं करने लगा। और उसकी आहोजारी देख के मुझे हंसी आ गई। इब्ने माजा की रिवायत है। सुभान अल्लाह। तो हर हर अमल पे अजर, हर हर अमल पे अजर, हत्ता कि हाँ, आप जो एक एक डॉलर आपने खर्च किया ना इस रास्ते में, उसके ऊपर भी अजर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज के लिए खर्च करने का सवाब फी सबीलिल्लाह खर्च करने से 700 गुना ज्यादा है। मुस्नद अहमद की रिवायत है ये। एक दिरहम जो आप खर्च करते हैं ना फी सबीलिल्लाह, कहीं पे भी आप और खर्च करते हैं, 700 दिरहम खर्च करने से बेहतर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आप सोचते हैं ना हम थक भी जाते हैं, हाय कितनी थकन हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे तेरी थकन और तेरे खर्च के मुताबिक अजर मिलेगा। यानी जितने आप थक गए हैं उतना अजर बढ़ गया, जितना आपने खर्च किया है उतना अजर बढ़ गया। सुभान अल्लाह। तो आपको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो थकन पे भी आपको अजर मिल रहा है, एक कदम उठाने पे भी अजर मिल रहा है, इंतजार पे भी अजर मिल रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट आप बीच में तस्बीहात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और पाक भी होते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब सुभान अल्लाह, एक हदीस में आता है कि जब इंसान खर्च करके हज के लिए जाता है ना और सवारी पर पैर रखते हुए लब्बैक कहता है, तो आसमान से आवाज आती है, लब्बैक व सादैक, आसमानों से उसके लिए आवाज आती है। और कहा जाता है, तेरा खाना हलाल, तेरी सवारी हलाल, तेरा हज मबरूर है, गुनाहों से तू पाक साफ है। लेकिन ये सिर्फ लेकिन उसके लिए आती है जो आम रिस्क के साथ गया। अगर कोई अल्लाह ताला माफ फरमाए हराम कमाई के जरिए जाता है हज के लिए और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा आती है, ला लब्बैक व ला सादैक, तेरे लिए ना लब्बैक ना सादैक है, तेरा खाना पीना हराम है, तेरा खर्च हराम है, तेरा हज सरासर गुनाह है, मबरूर नहीं है। तो ये भी सोचना चाहिए कि हलाल रिस्क के साथ जाया जाए, हराम रिस्क खर्च करके उसकी जरिए जब हज पे जाएंगे तो ऐसा हज कबूल नहीं है, तो वहां पे दुआएं भी फिर क्या कबूल होंगी। तो सोर्स ऑफ इनकम जरूर देखनी चाहिए, कमाई का जरिया क्या है। तो ये हर हज पे जाने वाला अपने से सवाल करे। अच्छा हाँ, एक बात और रह गई, लबई कहने पे भी क्या कोई अजर है? सुभान अल्लाह। लबैक लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक, ये जब आप हदीस में आता है कि जब कोई शख्स तलबिया कहता है ना तो उसके दाएं और बाएं और पूरे रुए जमीन के पत्थर, दरख्त और हर इमारत तलबिया कहती है। और शुरू करने वाले का जो अजर सवाब है, इसके साथ शामिल होने वाले सब के अजर सवाब का वो हकदार करार पाता है। वो एक बंदा होता है ना, वो शुरू करता है, बाकी फिर भूल जाते हैं। अच्छा आप देखते होंगे जो पहली दफा जा रहे हैं, क्योंकि हमने वो देखा होता है हज अक्सर टीवी वगैरह पे देखा होता है, तो उन्होंने पीछे से रिकॉर्डिंग चलाई होती है लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, तो हम सोचते हैं शायद इसी तरह वहां पे भी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब आप जाते हैं शुरू शुरू में, तो लोग जहाज में भी बड़े शौक से एकदम शुरू होते हैं, वो चंद मिनट की बात होती है, उसके बाद फिर अपने इधर उधर मसरूफ हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं लबैक पढ़ता। तो हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अलैहि सलाम तशरीफ लाए, और फरमाते हैं कि मैं अपने सहाबा से कहूं कि वो तल्बिया ऊंची आवाज से कहें, क्योंकि ये हज की खास अलामत है, तो तल्बिया ऊंची आवाज से कहना चाहिए, औरतों को नहीं मर्दों को, ठीक है, औरतें आहिस्ता आहिस्ता ही कहेंगी, आपने ऊंची आवाज में नहीं कहना। तो लेकिन देखें अब वो भूल जाते हैं, अब वो फिर अपनी बातों में लग गए, तो चाहे कोई एक बंदा अगर ऊंची आवाज में फिर पढ़ना शुरू कर दे और सारे साथ उसके मिलके पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो इस बंदे को अजर मिलता है सबके पढ़ने का भी, ठीक है। और एक और हदीस में कि अगर कोई अहराम पहनने वाला चाश्त से लेके गरूबे आफ्ताब तक तलबिया कहता है, तो सूरज गरूब होने के साथ उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो देखिए यह सब हमें धोने का यानी एक सफर है, और बैतुल्ला का तवाफ करना तो आपको पता है ना कि आप दुनिया में और किसी जगह का तवाफ नहीं कर सकते, हराम है किसी और जगह का तवाफ करना सिवाय बैतुल्ला के, ये कहीं आपको ये इबादत नहीं मिल सकती, ये सिर्फ यही है। और बैतुल्ला का तवाफ करने को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्ला का तवाफ भी नमाज है, अलबत्ता तुम इसमें बात कर सकते हो, नमाज में आप बात नहीं ना कर सकते, लेकिन इसमें बात कर सकते हैं, मगर ये भी ऐसे है जैसे नमाज, इतना इसका अजर है। फिर हिजरे अस्वद है, ये जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है, ये सफेद था जब जन्नत से आया था, लेकिन इंसान के गुनाह जो है ना, इंसानों ने इसको चूमा तो ये काला हो गया इनके गुनाहों की वजह से, तो कयामत में ये ओहद पर पहाड़ के बराबर होगा, और जिसने इसको हाथ लगाया होगा या बोसा दिया होगा तो ये उसकी गवाही देगा। तो अब आप ये नहीं कोशिश करेंगी कि आप हिजरे अस्वद तक पहुंचे, क्योंकि वहां पे इतनी धक्कम पेल होती है, मर्दों में घुस के जाना और आगे जाके ये कोशिश करना ये औरतों के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह नामुमकिन है हज में, चाहे आप सुबह जाएं शाम जाएं रात जाएं किसी पहर चले जाएं, वहां पे रश कम नहीं होता, इतनी धक्कम पेल होती है और उसमें बाज दफा औरतें प्रेस हो जाती हैं मर्दों के दरमियान में, तो ये सही नहीं है, इसलिए आप दूर से इशारा ही करेंगे। तो जब आप, खैर आप तो बैतुल्ला में वहां पे हरम में दाखिल हो गए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बैतुल्ला में दाखिल हो गया मैं नेकी में दाखिल हो गया, आप जब वहां पे दाखिल ही होते मस्जिद हराम में तो आप नेकी में दाखिल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप काबा की तरफ देखते हैं तो देखने का भी अजर है, सिर्फ आप बैठ के देख रहे हैं ना, देखने का भी अजर है, सुभान अल्लाह, इतना अजर, इतना अजर। सोचे आप जो जिस बंदे को ये मौका मिल जाए, तो वो तो खुश नसीब नहीं है, तो और क्या फिर उसके नसीबे का क्या कहना। तो ये सारी फजीलतें थी इसकी। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि उम्रा का तरीका क्या है, किस तरह से उम्रा करना है, और एहराम का तो खैर मैंने आपको बता दिया, तवाफ सही वगैरह। देखिए आप मीकात से एहराम बांधेंगे ना, और एहराम बांधने के ऊपर ये एक इबादत ऐसी है हज और उम्रा जिसमें आप अल्फाज बोलते नियत के, बाकी और कहीं पे भी आप अल्फाज नहीं बोलते, ना नमाज में ना कहीं अल्फाज नहीं बोलने, तो लेकिन यहाँ पे आपको अल्फाज बोलने हैं, जैसे बहुत ही आसान अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा लब्बई का उमरा, ठीक है, लब्बई का अल्लाहुम्मा लब्बई तो आता है ना, तो लब्बई का उमरा ये भी कह लें तो तब भी सही है, अल्लाहुम्मा लब्बई का उमरा ये भी कह लें सही है, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाजिर हूं, बस ये। उसके बाद आपने एहराम बांध लिया, उससे पहले अगर आप चाहें तो गुसल कर लें, अगर आपके लिए कोई ये मौजूद है सर्विस, अगर जहाज में ही है वहां से मीकात से गुजर हैं तो जाहिर गुसल नहीं कर सकते, तो घर से गुसल करके चलें। जब अहराम बांध लेंगे उसके बाद फिर ऊंची आवाज में अब तल्बिया कहना शुरू कर लेना। फिर आप वहां पे पहुंचे मस्जिद हराम में, तो दाखले के बाद पहले दायां पैर अंदर रखें और कहें बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है ना, आपको आनी चाहिए। दुआएं आप बाद में चाहें तो लिख लें, अभी तो जाहिर है मैं एक एक लफ्ज नहीं लिखा सकती, लेकिन अगर आपको मस्जिद में दाखिल होने की दुआ आती है तो बस वो मांग लीजिएगा। अच्छा, तवाफ शुरू करने से पहले आपने तलबिया कहना बंद कर देना है। एक बात और याद रखने की है, मस्जिद हराम में जब आप दाखिल होते हैं तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ते, बस तवाफ करते हैं, ठीक है, तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ने होते। तो तवाफ शुरू करने से पहले आपने, ये नहीं है कि तवाफ करते वक्त भी लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कह रहे, आपने तलबिया बंद कर देना। फिर आप इजरे अस्वद का इस्तलाम करेंगे, यानी क्या करेंगे, हाथ से इशारा करेंगे। अब आप वहां नहीं पहुंच सकती, नहीं है ना, हाथ से इशारा करना आपने दूर से ही कर देना। और दोनों हाथों से नहीं करना होता, ठीक है, दोनों हाथ जैसे लोग बुलंद करके करते हैं, हाथ अगर लगा सकते हैं तो लगा लें, बोसा दे सकते हैं दे, लेकिन जाहिर है मैंने आपको बताया कि मुमकिन नहीं है, तो इसलिए दूर से ही हाथ से इशारा करना है और उसके बाद हाथ को चूमना नहीं है, ये कोई सुन्नत नहीं है, ठीक है। और आपने कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। चले, अब आपने यहां से अपना तवाफ स्टार्ट किया हिजरे अस्वद से, और हर चक्कर जब आपका मुकम्मल होगा तो आपने इसी तरह इस्तलाम करना है। समझ आ गई ना कि इस्तलाम क्या होता है, ठीक है, जैसे इस तरह से इशारा करना। अब तवाफ के दौरान क्या करना है, अल्लाह का जिक्र करें, इस्तगफार करें, दुआएं करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुछ भी करें, दुआएं करें ज्यादा बेहतर है। और हर चक्कर में सोच लें पहले से कि मैंने इस चक्कर में ये दुआ करनी है, मसलन इस चक्कर में अपने बच्चों के लिए करनी है, इस चक्कर में उम्मत मुस्लिमा के लिए करनी है, इस चक्कर में मैंने अपनी दुनिया के लिए करनी है, इस चक्कर में मैंने अपनी आखिरत के लिए करनी है, इस चक्कर में मैंने जो लोगों ने दुआएं कही हुई है वो मांगनी है। तो बहुत टाइम होता है दुआ करने का आपके पास। अब आप कैसे याद रखेंगे आपके कितने चक्कर हो गए, कोई तरीका आप रख लें अपने पास कि जिससे आप ये ना हो कि भूल ही जाए कितने चक्कर हुए। तो मसलन आपने कोई, आपके पास कोई तस्बीह है उसके ऊपर गिन लें, या किसी और तरीके से गिन लें, हाथ पे गिन लें, इस तरह से आपने गिनते रहना है। और हर तवाफ के हर चक्कर में रुकने यमानी से गुजरते वक्त उसको हाथ से छूना मसनून है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, वहां पे भी अगर रश है तो वो आपको घुसने की जरूरत नहीं है। रुकने यमानी वो है जो इजरे अस्वद से पहले जो आता है ना कॉर्नर काबा का, वो है रुकने यमानी, ठीक है। उसके और हिजरे असरत के दरमियान आपने रब्बा ना आते ना दुआ पढ़नी है, रब्बा ना आते ना फिर दुनिया से ना, तो सबको आती है, ठीक है। अगर आप छू नहीं सकते उसको तो फिर इशारा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हिजरे असवत की तरह उसकी तरफ इशारा नहीं करना, हिजरे असवत की तरफ सिर्फ इशारा करना। इसको अगर छू सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं छू सकते तो कोई बात नहीं, वैसे ही गुजर जाए। और क्या दुआ पढ़ेंगे रुकने यमानी और हिजरे असद के दरमियान, रब्बा ना आते ना, ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात, उम्मीद है। अच्छा, अब आपने इस तरह सात चक्कर पूरे कर लिया। सात चक्कर पूरे करने के बाद आप वो देखते हैं मकामे इब्राहिम, वो गोल्डन सा एक है, उसके अंदर एक, उसके साथ से आप गुजरते भी होंगे, वो एक टोम सी है, गोल्डन सा है, उसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, सुभान अल्लाह, जब वो काबा को तामीर कर रहे थे। तो इसके पीछे दो रकत पढ़नी है। अब पीछे जगह अक्सर नहीं मिलती तो और पीछे चले जाएं, काफी पीछे जाके पढ़ लें, मस्जिद के अंदर तक चले जाएं, जहां पे भी पीछे जगह मिल जाए वहां पे दो रकत पढ़नी है, ठीक है। कोशिश करें पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें, नहीं भी पढ़ते कोई मसला नहीं है, लेकिन मसनून ये है, ठीक है। उसके बाद आप जमजम पिएंगे, ये 2 रकत पढ़ने के बाद, और उसके बाद आप सही करेंगे। सही, सफा और मरवा के दरमियान जो दौड़ना होता है या चलना होता है उसको सही कहते हैं। तो सफा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सफा से आपने, सफा पहाड़ी पे चढ़ के उसके बाद आपने वो दुआ पढ़नी है, इन सफा वल मरवा तमिन शायर अल्लाह फमन हज्जल बैता हुआ तमारा फला जुना अलैहि अय्या तवफा बिहिमा, ये पूरी आपने यानी अल्फाज कहने हैं। और ये भी कहना है अब्दाउ बिमा बदा अल्लाह बिही, मैं इब्तदा करती हूं उससे जिससे अल्लाह ने इब्तदा फरमाई, ठीक है। अब ये आपके पास लिखी होनी चाहिए। और फिर काबा की तरफ रुख करके 3 बार अल्लाह अकबर करें, हाथों से इशारा नहीं करना, बस दुआ करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, और पूरी एक दुआ है। तो वो आपने काबा की तरफ मुंह करके ये दुआ पढ़नी है, फिर आपने मरवा की तरफ जाना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसका चक्कर इस तरह से नहीं है जैसे काबा का चक्कर है कि सफा से मरवा और मरवा से सफा पे आएंगे तो एक चक्कर हुआ। नहीं, सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा तीसरा चक्कर, फिर मरवा से सफा चौथा चक्कर। यानी ये नहीं है कि राउंड पूरा लगाएंगे तो वो एक चक्कर बनेगा, बल्कि वन डायरेक्शन वन चक्कर हो गया, फिर मरवा से जब वापस सफा पे आ रहे हैं तो सेकंड चक्कर हो गया। इस तरह से गिनने हैं, समझ आई? क्योंकि ये भी गलत फहमी में ना रहिएगा कि वहां पे आप चक्कर पूरे करने में आप ऐसे करें कि भाई जाहिर है अब बंदा वो काबे का भी वो जहन के अंदर होता है, अब उसके बाद जो दौड़ना शुरू करते हैं तो फिर ऐसे ही चक्कर शुमार करना शुरू करते हैं कि सर्कल्स को शुमार करने लगते हैं। तो ये साथ ये भी करने हैं, तो साथ वहां पे हो गए और साथ यहां पे हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आप अच्छा इसके दरमियान आप क्या करेंगे, अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं करें, ठीक है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये भी मसनून है ये कहने अल्फाज। अच्छा जी, उसके बाद आप जब ये चक्कर मुकम्मल हो गए तो उसके बाद मर्द जो है जाहिर है अब वो हज पे सर मुंडवाएंगे तो बेहतर है कि इस वक्त फिर कटिंग करा लें, बस कटिंग कराने को कसर कहते हैं, ठीक है। और औरत अपने बालों से उंगली की एक पोर के बराबर बस बाल काट ले, एक पोर देख ले, ये फिंगर टिप जो है इसके बराबर बाल काटेगी, ठीक है। ये हो गया आपका उम्रा। अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो अब आप इसके बाद एहराम से निकल आएंगे, और बेहतर यही है कि आप हज तमत्तो ही करें। हज तमत्तो में क्या होता है, उम्रा और हज का आप अलग अलग एहराम बांधते हैं। हज कुरान में क्या होता है, एक ही एहराम से पहले उम्रा करेंगे उसके बाद हज के लिए चले जाएंगे, उसमें गलती का ज्यादा चांस होता है। जाहिर है आप जितनी देर एहराम में रहेंगे कोई गलती हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, अब आप एहराम से बाहर आ गए, आप जो एहराम की पाबंदियां हैं कोई खुशबू की या ये, और आपने तो खुशबू वैसे भी नहीं लगानी लेकिन मसलन आप साबुन यूज करते हैं, कितनी और तरह की पाबंदियां हैं ना, ये बाल ना टूटे, ये नहीं हो, तो वो सारी आपके ऊपर से पाबंदियां अब लिफ्ट अप हो गई, अब आप एहराम से निकल आए, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब जब हज का मौका आएगा तो हज के मौके पर आप फिर अब आप एहराम बांधेंगे, गुसल करें, एहराम बांध लें, जहां पे भी आप जहां पे भी हैं, आप मक्का से जा रहे हैं या मदीना से जा रहे हैं या जहां से भी जा रहे हैं, आप एहराम का सेकेंड वो बांधेंगे, उसी तरह हज की नियत के अल्फाज कहेंगे। जैसे पहले आपने उमरे की नियत के अल्फाज कहे थे ना, वो तो आपने प्लेन में कहे थे या जहां से भी आपने मीकात से गुजरे थे, मगर ये हज के अब एहराम बांध रहे हैं तो जहां पे भी आप हैं वहां से कहेंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। पहले क्या कहा था, अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन, अब क्या कहा, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, बस अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूं। और फिर आप मीना की तरफ जाएंगे, मीना की तरफ जाने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, अलबत्त जोहर की नमाज से पहले पहले मीना पहुंच जाना होता है। तो अब ये आप ये किस दिन ये आपका काम होगा मीना जाने का, ये आपका काम 8 ज़िलहज को होगा, ठीक है। 8 को या इस दिन से अब आपका हज की चीजें शुरू हो गई हैं, हज के काम शुरू हो गए, चाहे आप कितने ही दिन पहले से गए हैं, आपने कब से उम्रा कर लिया, मगर अब हज आपका यानी यहां से इस दिन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप मीना पहुंच गए। मीना पहुंच के वहां पे जोहर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, ठीक और ये नमाजें कसर पढ़नी है, ठीक है, क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर करी थी। अब यहां पे आपने रात गुजारी, अब देखिए आपके पास कितना फारिक टाइम है, और तो कुछ करना नहीं वहां पे। अब ये नमाजें पढ़ी और आपने वहां पे जो भी अपनी, जो मैंने आपको कहा है कि ये काम आप कर सकते हैं, दुआएं, कुरान, ये जो चीजें ये करें, अच्छा कोशिश करें कि बाजमात वहां पे नमाज अदा करें। फिर आप 9th को, अब ये 8th आपकी हो गई, 9th तारीख को, 9th जिल हज को आप मीना में फजर की नमाज अदा करेंगे। और आप तो सूरज तुलू होने का इंतजार नहीं करते, वरना सूरज तुलू होने के बाद अराफात की तरफ जाते हैं, मगर क्योंकि इतना रश होता है तो वो पहले ही लेके चल पड़ते हैं। तो आपने 9 तारीख को अराफा जाना है और अराफात के रास्ते में आपने तलबिया पुकारना है और अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी जिक्र करना मसनून है। ये तो ये आप लिख लें कि आपने उस वक्त बस में होंगे, काफी देर लगेगी आपको अराफा पहुंचने में, बहुत रश होता है, सब जा रहे होते हैं ना उस वक्त, तो आप तलबिया पढ़ेंगे अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब मैदान अरफा में पहुंचेंगे, वहां पे भी टेंट्स लगे होते हैं, तो वहां पे अब आज का आपका दिन गुजरेगा 9th का। वहां पे पहुंच के अब 10-11 बजे तक यूजुअली पहुंच जाती हैं, लेकिन अब आप जब पहुंच गए हैं तो मस्जिद निमरा में आप देखें वहां पे खुतबा होता है। अगर आप वहां पहुंच सकती हैं तो चली जाएं, अगर नहीं पहुंच सकती तो कोई मसला नहीं है, फिर आप अपने टेंट में ही बैठे हैं। और मैंने जो आपको रेडियो का कहा था ना, अगर आपके पास रेडियो होगा तो अब वहां पे हर तरफ आवाजें का, हर तरफ इंतजाम नहीं होता खुतबा सुनने का। हम लोग अक्सर ये कहते हैं हमें कौन सा समझ आना है, तो छोड़ो, तो कुरान पढ़ते हैं वो भी नहीं समझ आता तो फिर वो भी छोड़ दें। नहीं, आप जरूर कोशिश करें कि आप खुतबा सुने, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी ना इंशाल्लाह, वरना इंशाल्लाह अजर तो आपको मिलेगा खुतबा सुनने का। तो आपके पास रेडियो का तो जो भी आप लगाएंगे उस पे स्टेशन, तो इंशाल्लाह खुतबा उस पे आ रहा होगा। और कसरत से फिर तलबिया भी पढ़ें, जिक्र करें, इस्तग़फार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ें, दुआएं करें अरफा में। अच्छा, आपकी ये जोहर और असर की नमाजें जो हैं यहाँ पे एक साथ अदा की जाती हैं, एक अजान होती है और दो इकामतें होती हैं, और इन दोनों नमाजों के दरमियान कोई नफल नमाज भी नहीं पढ़नी, ठीक है। और याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज अरफा है, जो अरफा में नहीं पहुंचा ना उसका हज नहीं है, इसलिए ये जरूरी है अरफा में पहुंचना, ठीक है। फिर आप वहां पे देखेंगे, हो सकता है आपको जबले रहमत भी नजर आए, तो जबले रहमत तक अगर आप पहुंच सकते हैं, ये वो जगह है जहां पे दुआ कबूल हुई थी आदम अलैहिस्सलाम की, तौबा कबूल हुई थी, तो अगर आप पहुंच सकते हैं तो ठीक है, नहीं पहुंच सकते तो कोई मसला नहीं है। कई लोग उसके पर चढ़े भी होते हैं, आप नीचे पेशक खड़े हो जाएं। जबले रहमत की तरफ मुंह करके दुआ नहीं करनी, किबला रुख होकर दुआ करनी है, और वहां पे जाना चाहें तो आप वहां पे भी जाके दुआ कर सकते हैं। याद रखिएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है, और पिछले पैगंबरों ने भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो यहाँ पे भी दुआ की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, ये कहते रहिए, ठीक है। तो कसरत से ये कलिमात अदा करें, ये जिक्र करें, क्योंकि ये मसनून है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब वकूफ़ी अरफा आपने बहुत सुना होगा, वकूफ़ी अरफा क्या होता है? यानी ये जब जुहर असर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद खड़े होकर दुआएं करनी, ठीक है। आप जहां पे भी आपका टेंट है उसके अंदर ही आप खड़े होकर दुआएं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह यानी वकूफ़ी अरफा किया और बहुत लंबी लंबी दुआएं की, तो अब जरूरी नहीं आप जबले रहमत पे पहुंच के वहां पे भीड़ लगाएं और धक्के दें और चढ़ने की सहूबत करें। यहां पे आप याद रखिएगा, चूंकि आपको वकूफ करना है ना, ये जहन में रखिएगा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी हो कि आप वकूफ के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखें। ये ना हो कि सुबह से इतना थक जाएं कि वो मस्जिद निमरा चले गए, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जबले रहमत पे चढ़ रहे हैं, उतने आपके अंदर एनर्जी है नहीं, फिर आप थके टूटे बैठे हुए हैं। और जो असल टाइम है, ये वाला टाइम है जिस वक्त अल्लाह ताला नजूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों पे फख्र करते हैं और अल्लाह ताला बख्शिश करते हैं और दुआएं कबूल होती हैं, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम याद रखें। ये जोहर असर के बाद का ये जो टाइम खड़े होकर दुआएं मांगने का, तो आप देखेंगे जगह जगह लोग खड़े हुए हैं, इमामों के पीछे दुआएं मांगी जा रही हैं। तो आप बेशक उनके पीछे भी मांगे, लेकिन कोशिश करें कि आपका तन्हाई में कुछ वक्त हो के आप खड़े होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। यहाँ पे मतलब बहुत दुआएं करें, बहुत इस्तगफार करें, और जो आपके पीछे लोग हैं उनके लिए जरूर दुआएं करें, अपने लिए, उम्मते मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क के लिए। जितनी दुआएं आप रास्ते में भी, जितनी दुआएं आप लिख सकते हैं ना, लिख लें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है वहां पर पहुंच के अब याद ही नहीं आ रहा क्या दुआ मांगे, दुआएं खत्म हो गई। टाइम बहुत होता है कि ना मगरिब तक आपने वहां पे रहना, तो दुआएं याद ही नहीं रहती बंदे को। तो इसलिए आप कोशिश करें सारी दुआएं लिख लें। मसनून दुआओं की भी आपके पास इस वक्त बुक होनी चाहिए। तो आपका सामान वगैरह ले लेते हैं, जब आप मिना जा रहे होते हैं ना, तो आपका सामान लेके रख लेते हैं, जैसे आपको कहते हैं सिर्फ जरूरी सामान लेके जाएं। तो आपने अपना रेडियो, अपनी ये दुआओं की किताबें हैं और ये सब, तो यहाँ के लिए अरफा के दिन के लिए आप रेडियो लेकर आए हैं और दुआओं की किताब लेकर आए, बस, क्योंकि आपने इस दिन दुआएं दुआएं करनी है। और ये जो कलिमात मैंने आपको बता दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, ये पढ़ने हैं। तो जब आप इतनी दुआएं शाम तक करती रहेंगी, मगरिब तक करती रहेंगी, तो इसके लिए जाहिर है आपके अंदर इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना। आप अगर थकी नहीं आप इतनी है, तो आपसे कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा। और गाफिल दिल की दुआ नहीं अल्लाह ताला सुनते। तो अपनी सारी एनर्जी इस दिन के लिए जमा रखिएगा और थके हुए अरफा में मत पहुंचिएगा, प्लीज थके हुए ना पहुंचे, क्योंकि उससे पहले इतने काम कर रहे हैं आप वहां पे। देखिए आप तवाफ भी और ये सब उम्रे वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अरफा का दिन जो है ना, ये सिर्फ हज में होता है, ये नहीं मिलेगा और किसी वक्त। इस दिन रोजा भी नहीं रखा जाता वहां पे, जो हज पे जाते हैं वो रोजा नहीं रखते अरफा के दिन, ठीक है। तो आप अपना मतलब अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को बहाल रखिएगा उस दिन के लिए, इतने नहीं टायर्ड हो जाना कि वो दिन आपका जो है ना जाया हो जाए। तो ये बहुत जरूरी बात है जो आपने नोट रखनी है, ठीक है। और मैदाने अरफा में भी अब पता है ना, पूरी नमाजें नहीं पढ़नी है, खिलाफ सुन्नत है। कोई कहे कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो पूरी पढ़ लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये कि आपने जब कसर किया तो हमने भी करनी है, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। और दुआ करते वक्त किस तरफ रुख करके दुआ करनी है, किबला रुख होके, अच्छा। फिर अब जब आपकी मगरिब की अजान हो गई है, तो अजान होते ही, सूरज गरूब होने के बाद यानी अजान होते ही, आप बगैर मगरिब की नमाज अदा किए, बगैर मगरिब की नमाज अदा किए दोबारा में करें, फिर आप मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। आपको खैर खुद ही पता चल जाएगा, वो बसों में बिठाना शुरू कर देते हैं उस वक्त, सब चल पड़ते हैं वहां से, और तल्बिया कहते हुए और अल्लाह का जिक्र करते हुए और उसका शुक्र अदा करते हुए कि उसने आपको मैदान अरफा की हाजिरी की तौफीक अता की, क्योंकि यही हज है पता है। तो मुजदलिफा पहुंचने के बाद आप फिर वहां पे मगरिब और इशा की नमाजें कसर करेंगे। देखिए सुभान अल्लाह, इंसान का जिंदगी में कोई मौका ऐसा नहीं आता कि अजान हो रही है और इंसान नमाज छोड़ के और चल पड़े और इतनी दूर किया है और वहां पे जाके कसर करना शुरू कर दे, जबकि आप के अंदर एनर्जी है, आप कर सकते हैं। आप नहीं, सफर ही इतना अल्लाह के लिए किया, फिर भी आप कसर कर रहे हैं, तो इंसान सोचता है कि क्यों कसर करूं ना। तो यही तो बात है कि हर हर जगह बस अल्लाह की इताअत और सुन्नत को फॉलो करना, कि अल्लाह आपने कसर करने का कह दिया, हमने कसर की। अब यहां पहुंच गए, आपको नमाजें जमा करनी पड़ रही है, हालांकि आप पढ़ सकते थे मैदान अरफात में, पढ़ सकते थे, लेकिन आपने छोड़ दी, और यहां पे आके दोनों नमाजें जमा करके पढ़ रहे हैं, इतनी दूर आके भी। हम तो घर से निकले ही अल्लाह की इबादत के लिए थे, लेकिन आपने क्यों की? जोहर असर भी आपने जमा की, मगर बिशा भी आप जमा कर रहे हैं। ए अल्लाह, जैसे तूने हुक्म दे दिया और जैसे तेरे रसूल का तरीका था, हम वही करते हैं। पूरा हज हमें ये सिखा रहा है अल्लाह की ही और उसके रसूल की फरामीन को सामने रखना, अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की सुन्नत की इत्तेबा, کہ سنت سے نہیں ہم نے ہٹنا. جو لوگ بدعات کے شوقین ہوتے ہیں وہ دیکھیں وہ حج کے اوپر جا رہے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ, ہم اس سے زیادہ بہتر عبادت کر سکتے ہیں, ہم مغرب اور عشاء اپنے اپنے وقت پہ پڑھ سکتے ہیں, ہم کیوں قصر کریں, ہم پوری پوری پڑھیں گے, ہم اور زیادہ پڑھیں گے. نہیں نہیں پڑھنی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی میں جمع کروں گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی میں قصر کروں گی. اور اس رات کو جب آپ مزدلفہ میں ہوں گے کھلے آسمان تلے آپ لیٹے ہوں گے, اور اس رات کو آپ نے کوئی تہجد نہیں پڑھنی. کیوں کیوں نہیں پڑھنی؟ نوافل اور وتر بھی نہیں پڑھنے, سنتیں بھی نہیں پڑھنی. سبحان اللہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عشاء کی نماز پڑھی تھی, وہ فرض پڑھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں ادا کی تھی. تو اس وقت آپ نے سونا ہے. سبحان اللہ, کیوں؟ میرے نبی نے نہیں پڑھی, میں نے بھی نہیں پڑھنی. کتنا بڑا درس ہے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فٹ سٹیپ کو فالو کرنے کا. حج سارا سفر ہی اطاعت کا سفر ہے, حج سارا سفر ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر حکم سارا آنکھوں پہ, اس کے ہم سے میں ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گی. پھر آپ دیکھیں جب آپ کھلے آسمان تلے پڑے ہوں گے نا, اس طرح سے آپ کبھی نہیں پہلے لیٹے کہ آپ ہو سکتا ہے سڑک پہ لیٹے ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر لینے کو کوئی چیز نہ ہو, بے آرامی ہو رہی ہے, زمین سخت ہے. اس وقت بجائے اس کے کہ آپ باتیں کریں, تبصرے کریں, کمنٹس کریں, اتنے مسئلے, ہائے ہائے ٹریفک بہت, ہائے ہمیں یہاں پہ نیند نہیں آ رہی, آرام نہیں مل رہا, نہیں, آپ لیٹ جائیے. اور اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو نیند نہ آئے, لیکن اس وقت سوچیں, یہ بھی ایک فرسٹ ٹائم ان لائف ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس ہو, اور ہو سکتا ہے لاسٹ ٹائم بھی ہو, کہ یوں ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں. اس وقت سوچئے گا کہ اس طرح سفید کفن میں مردہ زمین میں جائیں گے, اور یہی مٹی ہوگی, اور جسم اسی طرح زمین میں رکھ دیا جائے گا بے جان. اور جیسے آج اتنے سارے انسان پڑے ہوئے, اسی طرح قیامت میں قبریں پھٹیں گی تو اتنے سارے انسان اٹھیں گے اور پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے, اور میں بھی اسی طرح ہوں گی. اس دن حشر کے میدان کو یاد کریے گا. تو پھر آپ جب اٹھے ہیں تو اب وہ کون سی ڈیٹ آ گئی ہے؟ اب یہ 10 تاریخ ہے, لیکن 9 تاریخ کا آپ نے پورا دن عرفہ میں گزار دیا نا, اور رات مزدلفہ میں گزار دی. اب یہ 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ کی جب صبح ہوتی ہے تو فجر کی نماز تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول سے پہلے ادا کی تھی, بخاری میں ہے یہ, اور ذرا جلدی ادا کر کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مزدلفہ سے. وہاں پہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے مشعر حرام, اگر آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, آپ کے اپنے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا, وہ پورا آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو مشعر حرام پہ ٹھہرے آپ, اگر وہ آپ کو ٹھہراتے ہیں, اور قبلہ رخ ہو کے خوب دعائیں مانگے وہاں پہ بھی. اگر نہ موقع ملے تو پھر آپ جہاں پہ بھی ہیں, بس میں جا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, تکبیریں کریں, جتنی ہو سکے دعائیں مانگے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ وہاں سے نکل گئے مزدلفہ سے. اب آپ کو جو کنکریاں جمع کرنی ہے نا, وہ آپ منا میں بھی جا کے کر سکتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ آپ مزدلفہ سے ہی کریں, منا کے راستے میں بھی آپ کر سکتے ہیں. منا سے لینا مسنون ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے, اور ککریوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. تو چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی ہو سکتی ہیں. اچھا, جب آپ منا پہنچیں گے آپ واپس, تو آپ جمرہ عقبہ کو, جو بڑا شیطان جس کو کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ نے جا کے کنکر مارنے ہیں. یہ مکہ سے جو قریب ہے وہ والا, اور یہاں پہنچنے کے بعد تلبیہ کہنا بند کرنا ہے, ٹھیک ہے. تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے یہاں پہنچ کے آپ. تو کنکر ماریں گے آپ اس کو, اور یہ جمرات تک پہنچنا بھی بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے, اس میں بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے. تو ایسے میں ضرور یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کی सुन्नत को और उनकी कुर्बानी को, कि कैसे वो कुर्बानी दे रहे जा रहे थे और शैतान ने उनको रोका था, तीन जगह पे रोका था और उन्होंने साथ साथ कंकरियां मारी थी। तो ए अल्लाह मुझे भी शैतान से अपनी पनाह में ले ले, मेरी औलाद को भी शैतान से अपनी पनाह में ले ले, अपने रास्ते पर इसी तरह से मुझे चलने वाला बना दे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनाया था। तो आप इंशाल्लाह जमरात अपने मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद मर्द जो होंगे वो, अच्छा एक और बात, हर कंकरी अलग अलग मारनी है, सात इकट्ठी सातों नहीं मार देनी, और हर कंकरी के साथ क्या कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है, और दुआ के लिए रुकना नहीं है वहां पे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि यहां दुआ के लिए आप रुके नहीं थे फिर कंकरियां मार के, ठीक है। तो जवाल से पहले तक आपने कंकरियां ये मारनी है, और जूते नहीं मारने, गालियां नहीं देनी, बेहुदा बातें नहीं करनी। अच्छा आप लोग जो यहां से जाते हैं, आप लोगों की कुर्बानी वहां पे वो खुद ही कर देते हैं, आप कुर्बानी के लिए आपके पास कोई नहीं लेकर आता कि आप कुर्बानी अपने हाथों से कर रहे हो, तो वो तो आपने पैसे पे कर दिए होते हैं, तो वो आपकी कुर्बानी वो उन्होंने खुद ही कर दी होती। तो अब आपका अगला काम, जाहिर है कुर्बानी तो आप यानी हो चुकी है आपके लिए, ये अज्यूम कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, आके मर्द जो है वो अपने बाल मुंडवाएंगे, और औरतें कितना काटेंगी, एक फिंगर टिप के बराबर, और मर्द अगर शेव कराएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्होंने शेव कराया था सर को ना हलक, तो उनको उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआ फरमाई उनके लिए, 3 बार। और जिन्होंने कसर कराया, जिन्होंने बाल बस कटवाए यानी शेव नहीं कराया सर को, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा दुआ की थी। तो आप देख लें मर्द के वो कितना चाहते हैं कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी थी वो चाहिए कि अल्लाह सर मुंडवाने वालों को बख्श दे। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप सर बाल कटवाने वालों के लिए भी दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सर मुंडवाने वालों को बख्श दे। फिर तीसरी दफा सहाबा ने दरख्वास्त की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सर मुंडवाने वालों को बख्श दे। चौथी दफा जब उन्होंने कहा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाल कटवाने वालों को बख्श दे। तो बाल भी उतरवाना एक कुर्बानी है ना, सोचे, क्योंकि इंसान फिर अच्छा नहीं लगता, उतना नहीं उसकी खूबसूरती खत्म होती है, तो लेकिन अल्लाह के लिए कौन है जो बालों की कुर्बानी देता है, बात तो ये है ना। तो अब जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप एहराम की पाबंदियां आपके ऊपर खत्म हो गई, सिवाय शोहर बीवी का जो ताल्लुक है उसकी पाबंदी बाकी रह जाती है। वो कब उठेगी पाबंदी, वो उठेगी जिस वक्त आप तवाफे जियारत या तवाफे इफादा जिसको कहते हैं वो कर लेंगे। ये अब आप हरम की तरफ जाएंगे और ये तवाफ करेंगे, तवाफ के लिए भी बावजू होना जरूरी है, और तवाफ उसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे करने की सुन्नत है, और फिर उसी तरह आप 2 रकत नमाज पढ़ेंगे मकाम इब्राहिम के पीछे, आबे जमजम आप पियेंगे, सही करेंगे, ठीक है। हज तमत्तो करने वाला सही करता है। हाँ आप अपने उनसे पूछ लो जो जिनके साथ आप गए, अगर आप हज किराम कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि अगर आपने सही कर ली भी है तो फिर आप ना करें, लेकिन हज तमत्तो करने वाले जो हैं वो सही करेंगे, ठीक है। अगर किसी वजह से आप उस दिन तवाफे जियारत ना कर सकें, क्योंकि बाल दफा वो नहीं लेके जा सकते आपको, अगर उस दिन ना कर सकें तो कोई मसला नहीं, 11, 12, 13 जिलहज में किसी दिन भी आप जाके कर सकते हैं, ठीक है, किसी दिन भी कर सकते हैं। इन जल्दी से जल्दी कर लें तो अच्छी बात है, ताकि आपके ऊपर तमाम एहराम की पाबंदियां उठ जाएं। बाकी पाबंदियां तो उस वक्त ही उठ गई थी जब आपने बाल कटवा लिए थे ना, उसके बाद भी आप ये बाल कंघी कर रही हैं या बाल टूट रहा है या कोई ऐसे मसले हो रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा एक और बात यह है कि अय्यामे तशरीक उसके बाद शुरू हो जाते हैं, यानी 11, 12 और 13। जब आपने तवाफे इफादा करनी है ना, आपका अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक आपके ये सारे अरकान मुकम्मल हो गए, आप वापस अब मीना आ जाएंगे, ठीक है। अब मीना में आपने ये 11, 12 और 13 गुजारने हैं। कोई अगर चाहे तो 12th को भी वापस आ सकता है, अगर कोई चाहे तो, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन मगरिब से पहले फिर वो मीना से निकल जाए, और वरना 13th को इंशाल्लाह ताला 13th तक वहां स्टे करके फिर आप आते हैं। और ये 11, 12 और 13 ये अय्यामे तशरीक कहलाते हैं, इसमें कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, इसमें आपके पास बहुत टाइम होगा, आप अपने टेंट में बैठे रहे बजाय बातें करने के, तो बेहतर यह है कि आप इस टाइम में अल्लाह का जिक्र बुलंद करें। और इसमें आप क्या करेंगे, जाहिर है इसमें एक ही काम है जो मीना में करने का, और वो है जवाल के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारना। जमरात को कंकरियां मारते वक्त सबसे पहले जो जमरा ऊला है, जो मीना की तरफ है, जिसको छोटा शैतान कहते हैं, उसको करेंगे, फिर वस्ता को, फिर उकबा को, ठीक है। और अब तो काफी देर तक भी आप मतलब अच्छा उन्होंने रास्ता बना लिया है, ऐसा इंतजाम कर दिया है कि काफी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये सूरज ढलने के बाद भी मारी जा सकती है, ये बुखारी में, ठीक है। और इस दफा आप जब मारेंगे ना 11, 12 और 13 को, तो पहले जमरे को कंकरियां मार के जरा हट के फिर दुआ मांगेंगे, दूसरे जमरे को कंकरियां मार के जरा हट के फिर दुआ मांगेंगे, तीसरे जमरे को और कंकरी मारने के बाद वहां पे नहीं रुकना, ना दुआ करनी है, ठीक है। अच्छा, इन दिनों में आप सारा दिन आप फारिग हैं, आप देखे ना, आपने कंकरियां भी मार ली हैं, आप कुछ करने को तो नहीं है, तो इन दिनों में अगर कोई चाहे तो मक्का जाके नफली तवाफ करना, ये भी साबित है बुखारी में, ठीक है। तो गए आप तवाफ करके वापस आ जाए, बाज लोगों का दिल नहीं चाहता वापस आने का, वो कहते हैं हम दम दे देंगे, कुछ कर लेंगे, बल्कि आराम से अब हमें होटल में रहने दें, क्योंकि हम जो है ना बस अब हमसे नहीं जाया जाता, और मीना में टेंटों में बेआरामी करें। तो देखिए ये तो सुन्नत है, तो आराम से टेंट में आराम करने के लिए तो नहीं गए ना वहां पे, तो आप कोशिश करें कि 3 दिन वहां पे गुजारें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और अब बाकी आपका ये है कि अगर आप उसके बाद यानी आप 13 जिलहज को आप जब ये जमरात करके रमी करके आप वहां से निकल आएंगे, तो उसके बाद अगर आपने तो मक्का से चले जाना है, अब आपका वापसी का सफर है, तो तवाफ विदा करें, और यानी फेयरवेल तवाफ। और अगर नहीं जाना तो फिर अभी आप नहीं करेंगे, फिर आप जाहिर है वहां पे स्टे कर रहे हैं तो स्टे करें, और उसके बाद आप जब आने लगेंगे उस वक्त आप फिर तवाफ विदा करें। अच्छा, अब ये देखिए सारा सफर है, इस सफर के अंदर कुछ वादे वईद भी है ना, जब आप तवाफ विदा करें, अलविदाई मुलाकात इंसान की बड़ी जज्बाती होती है, इमोशनल होती है ना, तो उस वक्त कुछ वादे कर लें, कुछ नियतें कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी आप क्या करें, लेकिन एक बात जरूर, इसकी नियत जरूर करिएगा कि हज के बाद अब जिंदगी में क्या चेंज लाना है, वक्त कैसे गुजारना है, मसरूफियात मेरी क्या होंगी, जो मेरी ट्रेनिंग हुई है हज पे उसका मैंने कैसे फायदा उठाना है, मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे एक एक इंच, एक एक स्टेप, कहीं कहा गया दुआ करनी है जमरा पे, कहीं नहीं करनी, मैंने एज इट इज किया, क्या फर्क पड़ता था कहीं कर लेती और कहीं नहीं करती, क्या फर्क पड़ता था अगर मैं ऑपोजिट कर लेती, लेकिन नहीं, मैंने अपनी अकल नहीं इस्तेमाल की, मैंने वही किया जैसे अल्लाह का हुक्म था। तो मुझे हर हर जगह पे यही करना है कि अपनी अकल को एक तरफ रखना है और अल्लाह के हुक्म को आगे रखना है। मेरी पूरी जिंदगी में अब मेरे रब का हुक्म आगे होगा, मेरे नबी की सुन्नत आगे होगी। तो ये सोचिएगा कि सफर में भी और वहां पे मीना में भी आपके पास बहुत टाइम होगा कि जिंदगी पे अब क्या असर आना चाहिए। ये जो सामान साथ लिया है अल्लाह की याद रखने का, अल्लाह का जिक्र करने का और दुआएं करने का, और कितनी सारी आपने प्रैक्टिसेस की ना हज में, अब वापसी होने लगी है, तो क्या ये सब यहीं छोड़ के चले जाना है या साथ ले जाना है? अल्लाह के लिए मैंने इतनी मुश्किलात उठाई, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इतना लंबा सफर किया, आइंदा भी क्या मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह की खातिर कुछ करने को तैयार हूं या नहीं? क्या तकवा वाली जिंदगी का प्लान लेकर वापस जा रही हूं या नहीं? वापस आने के बाद रब के कुर्ब वाली जिंदगी इख्तियार करने के लिए तैयार हूं या नहीं? जो कुर्ब अब रब से मिला है बस वो यहीं तक रहेगा या आगे भी जिंदगी में होगा? ये सब सोच के आइएगा, वहां से सोच के आइएगा। अल्लाह ताला जो भी जाने वाले हैं सबको हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए, और जो पीछे हैं अल्लाह ताला उनको भी लेकर जाए और उनको इन दिनों का बेहतरीन फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे यह हज, सबकी दुआओं को कबूल करे वहां पर, सबके हज को कबूल फरमाए, सबके लिए आसानियां फरमाए। اور بار بار لے کر جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں کی سہولت کے لیے الحمدللہ ہم نے ویب سائٹ پہ سلائیڈ ڈال دی ہے, ایک مین پیج پہ ہے حج کے سفر کے نام سے, وہ ضرور آپ دیکھ کے جائیے گا. اسے آپ کو دوبارہ یہ انشاءاللہ تعالی ریمائنڈر ہو جائے گا ذہن میں تمام سٹیپس کا. اور میری سب سے درخواست ہے جو لوگ بھی جا رہے ہیں, میرے لیے, میرے خاندان والوں کے لیے, سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی, مغفرت کی اور اللہ کی رضا کی, اس کی دعا ضرور کریے گا. جی, مدینہ میں جانے کا, مدینہ میں جانے کا یہی ہے جیسے آپ دوسری مساجد کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں, اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ جانا چاہیے. روزہ رسول کی حاضری کی نیت سے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جہاں پہ بھی جائیں تو مسجد کی نیت سے جائیں, اس کی زیارت کی نیت سے جائیں, اور وہاں پہ جا کے ضرور سلام دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سلام بھیجیں. لیکن لوگ جو یہاں سے کیا دیتے ہیں کہ میرا وہاں سلام کرنا, تو ان کو کہیں کہ آپ یہیں پہ درود پڑھیں, کیونکہ یہ مسنون نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی دھکم پیل نہ کریں, وہ اللہ کے نبی, وہاں پہ تم کا خیال رکھیے. وہاں پہ اوقات ہیں عورتوں کے لیے, ریاض الجنہ میں وہاں پہ پہنچنے کے لیے عورتوں کے لیے اسپیسیفک ٹائم رکھا گیا, اسی ٹائم پہ جا سکتی, اسی ٹائم پہ دروازے کھولے جاتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا کہ عورتیں اتنا تیز دوڑتی ہیں پھر, کہ وہ بھی ایک شرمناک بات ہو جاتی ہے. تو آپ پلیز اس چیز کا لحاظ رکھیے گا, ادب اس جگہ کا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, وہاں پہ صحابہ کرام ہے, وہاں پہ جنت البقیع ہے. تو بڑے بڑے لوگ حرام فرما رہے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ بہت احترام ہو, بہت احترام. ریاض الجنہ میں آپ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ دو نفل ادا کیجئے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے زمین پر, تو وہاں پہ نفل ادا کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ جنت میں ہیں, مگر اس میں بھی دھکم پیل نہ ہو. تو بس وہاں پہ مسجد نبوی کے لیے تو یہی باتیں ہیں, باقی اور تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے. اور مکہ میں جتنے دن آپ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں پہ شاپنگ اوائڈ کریں. اگر آپ نے کچھ چیز خریداری کرنی تو مدینہ میں کر لیں, لیکن مکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت طواف کرنے میں گزارے ہیں, کعبہ کی طرف دیکھنے میں گزارے. ٹھیک ہے, وہاں پہ نمازیں ادا کرنے میں گزارے. بار بار عمرے کا احرام پہن کے اور بار بار آنا مسجد عائشہ سے, یہ بھی مسنون نہیں ہے, انلس کسی کی ایسی مجبوری ہو گئی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو اس کے علاوہ کوئی اس میں وقت ضائع نہ کرے, اتنی دیر بھی مسجد حرام میں ہی بیٹھے, طواف کیجئے اور نمازیں وہاں پہ با جماعت ادا کی کریں, ایک لاکھ نمازوں کے برابر اجر ہے. ٹھیک ہے, ایک ضعیف حدیث ہے وہاں پہ 40 نمازیں ادا کرنے کی مجلس مسجد نبوی میں, تو وہ ضعیف حدیث ہے, اسے بہتر ہے کہ آپ حرم میں 1 لاکھ نمازوں کا اجر پائیں. جی, ایک دن میں ایک طواف, کیا کتنے ہی طواف کریں جتنا بھی آپ کو موقع ملے, لیکن طواف کے ساتھ یہ نہیں ہے طواف صرف کرنا مطلب چکر لگا لیا اس کے بعد آپ نے یعنی مقام ابراہیم پہ 2 نفل بھی ادا کرنے ہیں, یہ بھی طواف کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور باوضو ہو کے طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے, پیریڈز, پلیز آنسر فار دا سوم, کیا سوم کا آپ نے کیا رمی کے لیے کنکری چننا افضل کہاں سے ہے؟ مزلفہ یا مینا میں مسنون ہے. ٹھیک ہے, آپ مزلفہ سے بھی چن سکتے ہیں, لوگ چنتے ہیں وہاں سے, لیکن مینا میں مسنون ہے. واٹ آر دا ڈیٹس آف سوم فار اس ہو آر سٹینگ بیک؟ انشاءاللہ وہ میں اس کا کلاس کے بعد بتاؤں گی, آج چونکہ حج والوں کے لیے اسپیشل کیا گیا ہے تو وہ انشاءاللہ میں کلاس کے بعد بتاؤں گی فرائیڈے کو. ٹھیک ہے, تاکہ اور بھی لوگ پھر ہوں گے نا. ایک, ہاں جی, ہر پلیز ٹیل اس ہاؤ مینی راکس ٹو پک, آلسو دا ڈیٹس فار دا سوم ہو آر ناٹ گوئنگ. وہ میں انشاءاللہ آپ کو سوم کا بتاؤں گی, جتنی ابھی آپ کنکریاں ظاہر ہے مارنی ہیں اس مطابق آپ اپنے پاس رکھ لیں جتنے دن آپ نے وہاں پہ اسٹے کرنا ہے, वहाँ पे फिर आप मीना में तो चुन सकते हैं ना, वहाँ पे ही आप होंगे। अपने मरहूम माँ बाप के लिए भी कर सकते हैं उम्रा जी इंशाल्लाह। लेकिन बार बार मैंने कहा ना कि उस वक्त जाके नियत करके आने की ज़रूरत नहीं है जी। जो भी जा रहे हैं वो पीछे जो आपकी बहनें हैं आपके साथ, आपकी कुरान की साथी, इनके लिए भी दुआ करिएगा ज़रूर, सब की दुनिया और आखरत के लिए, सबके घरों में रहमत और बरकत और आफियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आफियत की दुआ करो, आफियत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है भैया की सुबहान अल्लाह, आप लोगों पे बहुत बार बार कहने के ऊपर इस साल मैंने दोबारा ये हज का किया, वरना मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले किया था हज के ऊपर जो दर्स हुआ था लास्ट जो था वो भी हज वालों के लिए किया था। लेकिन आप लोगों के बार बार इसरार पे इस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मुबारक करे और हर हर रुकन सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तवाफ इफादा जमजमा सही, डू यू कट हेयर टू? हेयर तो कट कर लिया ना आपने, हज पे कह रही है या फिर आप अच्छा इफादा आपने लिखा तो हज पे कह रही है जाहिर है, वो तो आपने वहीं पे कर लिया ना मीना में, अभी आप तवाफ इफादा के लिए तो आई नहीं थी, आपने वहीं पे काट लिए थे ना बाल। दोबारा आप इस लेक्चर को सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अब आपके एक ओवरव्यू हो गया आपका सारी चीज़ों का, क्या क्या अरकान है, क्या फजीलत है, क्या आप कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप, हाँ जो मैंने आपको MP3 और वो रखने का कहा ना CD प्लेयर और या तफसीर की किताब, वो इसलिए कहा कि आप मीना में आपके पास इतना फारिग टाइम होता है तो उसमें फिर क्या करेंगे, अब बजाय बैठ के बातें करते रहने में इंसान अपना वक्त इन चीज़ों में गुजारे। ठीक है अभी तो नहीं हज स्टार्ट हुआ, 8th से मैंने कहा ना आपके उस दिन से उसके अरकान स्टार्ट होते हैं। कि नाम का उम्रा कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अभी मुझे कहीं और जाना है तो इसलिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अगर किसी का और कोई सवाल हुआ तो जुमे को इंशाल्लाह आफ्टर क्लास फिर आप कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक।